योएल अध्याय एक। अपने अध्ययन में भविष्यद् वक्ताओं से भेंट करते हुए हम आज एक ऐसा भविष्यद् वक्ता के पास आते हैं जिसके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं, परंतु ये निश्चित है कि वो यहूदा राज्य के लिए परमेश्वर का संदेश लाया था। तो आइए हम अपनी अपनी बाइबल में योएल की किताब खोलें। योएल एक ऐसा भविष्यद् वक्ता है जिसकी पिछली जिंदगी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि वो पेतुएल का पुत्र था, लेकिन ये पेतुएल कौन है हम नहीं जानते, इसलिए इससे भी हमें कोई मदद नहीं मिलती। योएल यहूदा का एक भविष्यद् वक्ता था। यहूदा परमेश्वर की प्रजा का दक्षिणी राज्य था। वो एलिशा को जानता था और इसमें शक नहीं कि वो एलिया से भी बहुत अच्छी तरह परिचित था, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी का समय एलिशा के समय में था। जब एलिशा इसराइल के उत्तरी राज्य में भविष्यवाणी कर रहा था, तब योएल दक्षिणी राज्य में भविष्यवाणी कर रहा था। उन दिनों में भविष्यद् वक्ताओं के लिए स्कूल होते थे जहां भविष्यद् वक्ता एक साथ इकट्ठे होते थे। एलिशा भी एक स्कूल का प्रबंधक था और इसलिए योएल एलिशा से अच्छी तरह परिचित था, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी के बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। पहले अध्याय में वो टिड्डियों द्वारा लाए गए विनाश का उल्लेख करता है। यहां अलग अलग टिड्डियों के नाम दिए गए हैं, परंतु वे वास्तव में एक ही टिड्डी के विकास के विभिन्न चरण हैं। उसका कहने का अर्थ यहां ये है कि टिड्डी अपने विकास के पहले चरण में कुछ कम खाती है, दूसरे चरण में उससे अधिक खाती है, और तीसरे चरण में वो उससे भी अधिक खाती है, और चौथे चरण में वो पूरी विकसित होकर सारी फसल को खा जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि टिड्डियों द्वारा लाई गई विपत्ति अति भयंकर थी। योएल टिड्डियों द्वारा लाए गए विनाश की तुलना परमेश्वर के न्याय से करता है जो शीघ्र ही उन पर आने वाला था। इस प्रकार यहां देश का वर्तमान विनाश दर्शाया जा रहा है। योएल इस विनाश को आत्मिक उपमा देता है और वो तुरंत ही अंतिम दिनों में चला जाता है। जब इन टिड्डियों के समान सेनाएं आकर उस भूमि को ढांप देंगी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां की भूमि उजड़ जाएगी। योएल अध्याय एक पद एक और दो। यहोवा का वचन जो पेतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वो ये है, हे पुर्नियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में व तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई? क्या आपको ऐसी कोई घटना याद है? क्या आपको याद आता है कि कभी ऐसा उजाड़ हुआ है? योएल अध्याय एक पद तीन। अपने बाल बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। उन दिनों में ज्यादातर इतिहास मुंह के शब्दों द्वारा चलता था। पिता अपने बच्चों को बताते थे और फिर दादा अपने पोतों को बताते थे और फिर पोते पोतियां कहते थे, पता है मेरे दादा ने मुझे ये बताया था। और इस तरह इतिहास उनकी परंपरा थी और मौखिक इतिहास आगे चलता था। ज्यादातर इतिहास इसी मौखिक परंपरा के द्वारा सुरक्षित था जो वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताते थे और सर्वज्ञात बातों को ज्ञान देते थे। अब ये परमेश्वर का उद्देश्य था कि इतिहास परिवारों में रहे। कई बार ऐसी बातें भी थी जो यादगार के रूप में स्थापित की जाती थी। बोझ जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, उसमें सब इकट्ठे होते थे और उनका उद्देश्य था अपने इतिहास को और परमेश्वर के काम को याद करना। जैसे मंडपों या तंबू का पर्व जो उनको याद दिलाता था कि कैसे उनके वंशजों को परमेश्वर ने 40 साल जंगल में भटकने के बाद भी सुरक्षित रखा, इसलिए वे अपने घरों के पास छोटे छप्पर डालते थे और इन अस्थाई छप्परों में जाकर रहते थे, और जब वे ये बनाते होंगे तो जरूर उनके बच्चे भी उसमें हिस्सा लेते होंगे। वे बाहर जाकर खजूर की डालियां इकट्ठी करते होंगे और आकर अपने पिता के साथ उन खजूर की डालियों को लगाते होंगे। डैडी, इन खजूर की डालियों के साथ क्या करें? हम यहां क्यों ये छोटा घर बना रहे हैं? बच्चे घर बनाने और उसमें जाने में हमेशा उत्सुक होते हैं। आप जानते हैं कि बच्चे इन बातों को पसंद करते हैं, लेकिन पिता कहते होंगे, एक समय था जब हमारे पूर्वज प्रथम बार इस देश में आ रहे थे। जब वे मिस्र से बाहर आए तो उन्होंने जंगलों में 40 साल गुजारे। जब वे जंगल में थे तब परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया, उनको देखभाल की, परमेश्वर ने उनकी रखवाली की, और इस तरह पिताओं को बच्चों को समझाने का मौका मिलता था कि कैसे परमेश्वर उन लोगों के साथ इतिहास में चलता था। फसा के लिए भी वही परंपरागत सवाल उठाएंगे। बच्चे कहेंगे, डैडी, इस रात में और दूसरी रातों क्या अंतर है? उत्तर में उनके पिता मिस्र से मुक्ति पाकर बाहर आने के इतिहास को दोहराएंगे। इसका उद्देश्य था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को परमेश्वर के विश्वास और भरोसे के बारे में बताना। बच्चों ने घर में देखा और सीखा, इस प्रकार उन्हें इतिहास याद हो गया। बच्चों के लिए परमेश्वर की बातों को सिखाने का और आपके जीवन में परमेश्वर के कामों को समझाने के लिए ऐसे अवसर अति उपयोगी होते हैं। एक अच्छी बात मेरी माँ के बारे में ये है कि वो एक आकर्षक कहानी सुनाने वाली थी, और वो हमेशा कहानियां सुनाती थी कि परमेश्वर कैसे प्रार्थना का जवाब देता है, परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में और परिवार के इतिहास में काम किया था, और वे बातें हमारे हृदयों में पूरी तरह बैठ गई थी। इसी प्रकार उसने हमें विश्वास करना सिखाया था। अगर हम बीमार होते तो वो हमें बताती कि कैसे पिछली बार परमेश्वर ने हमें चंगा किया था। एक बार जब मुझे बहुत ज्यादा बुखार हुआ था और मेरे भाई को दमा हुआ था, मेरी माँ परमेश्वर की बीते दिनों के कामों को दोहराती थी। इस तरह ये बच्चे के दिल और दिमाग में बैठ जाता है और तब वे उसी में बने रहते हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को वे कहानियां सुनाता हूँ जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी, परमेश्वर के उन कामों के बारे में जो हमारे परिवार में बीते समय में हुए थे। जब इसराइल के लोग यर्दन नदी के पास आए तब परमेश्वर ने उस बाढ़ के मौसम में यर्दन नदी को रोक दिया और वे उस यर्दन नदी को बिना भीगे और बिना पानी में उतरे पार कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने उस बाढ़ के मौसम में भी यर्दन नदी के बहाव को रोक दिया था। अब जैसे वे बाहर आए उनमें हर गोत्र में से आदमी थे जो यर्दन नदी के तल से पत्थरों को लेकर आए थे और नदी के किनारे पत्थरों का एक ढेर लगाया, जिसका उद्देश्य था कि जब भविष्य में आप अपने बच्चों के साथ इस रास्ते से गुजरे और इस विचित्र पत्थरों के ढेर को देखें तो आपके बच्चे कहें, डैडी वहां ये पत्थरों का ढेर क्यों लगा है? तब पिता के पास अपने बच्चों को ये बताने का सुंदर मौका होगा कि उन्हें बताएं कैसे परमेश्वर ने उनको इस जमीन पर लाने के लिए आश्चर्य कर्म किया। तब वे उनसे कहेंगे, इस यर्दन नदी को देखो जो अब बह रही है, परमेश्वर ने इसे रोककर चलने के लिए हमें मार्ग दिया था और हमारे पूर्वज सूखे तल पर चलकर इस पार आए थे। उनको इस देश की धरती पर लाने के लिए परमेश्वर ने पानी के उस बहाव को रोका था। इस प्रकार वे अपने बच्चों को परमेश्वर की बातें सुना सकेंगे। ये परमेश्वर का उद्देश्य था कि इस तरह ज्ञान का प्रसारण किया जाए, उसका ज्ञान परिवारों में पीढ़ी से पीढ़ी तक रहना चाहिए। इसलिए अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और तब ये उस पीढ़ी का कर्तव्य बन जाएगा कि वे उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाए और आगे। ये मौखिक परंपरा ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए थी। परिवारों में रेडियो के आने के कारण ये मौखिक परंपरा समाप्त हो गई है। मेरे बाल्यकाल में बच्चे तरह तरह के रेडियो प्रोग्राम सुनते थे। कहानी सुनाने के ये परंपरागत तरीका रेडियो के आने के साथ विलोप हो गया और टीवी ने तो मौखिक प्रसारण की परंपरा को ही नष्ट कर दिया। अब बच्चे टीवी के द्वारा मनोरंजन करते हैं और परिवारों में बहुत कम ही बात होती है। जहां पुराने युग के लोग पूरी शाम बैठकर बातें किया करते थे, कहानियां सुनाया करते थे, वो सब अब समाप्त हो गया है। इन रेडियो, टेलीविजन और इस तरह के दूसरी चीजों का हमारे घरों पर कब्जा कर लेने से दिल की बात बताने की ईमानदारी और मौखिक बातचीत आदि सब सौभाग्य हमसे छिन गए हैं। मैं सोचता हूं कि रेडियो और टेलीविजन निश्चित ही समाज के पतन के कारण है, परंतु योएल ज्ञान के इस मौखिक प्रसारण को बढ़ावा देता है। अब वो इस भयानक महामारी के बारे में बताना शुरू करता है। योएल अध्याय 1:4, जो कुछ गजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। जैसे मैंने कहा था, ये इब्रानी शब्द है अर्थात निगलना और चबाना, और वो इस प्रकार टिड्डी के बढ़ने को दर्शा रहा है। योएल अध्याय 1:5, हे मतवालों जाग उठो और रो, और हे सब दाक मधु पीने वालों नए दाक मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वो तुमको अब ना मिलेगा। टिड्डियों के द्वारा विनाश का आरंभ हो गया प्रतीत होता है। अब जो भूमि पर आखिरी फसल हुई वो अंगूर की फसल थी जो काट ली गई थी, इसलिए टिड्डियां अंगूर की फसल की कटाई के समय शुरू हुई थी और सारे अंगूर को नष्ट कर दिया, इसलिए वहां नया दाक मधु नहीं बनाया जा सकता था। इसराइल में मदिरा पीना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसके बारे में कई भविष्यद् वक्ताओं ने बताया है। नशा लोगों की बहुत गंभीर समस्या बन गया है। नशा करने ऐसे पहले लोग होंगे जो इन टिड्डियों के परिणाम स्वरूप दुख उठाएंगे। अंगूर को छोड़कर दूसरी फसलें तो पहले ही काटी जा चुकी थी, लेकिन बसंत में नया झुंड आया था और अंडे छोड़ गया था, बल्कि बसंत के समय टिड्डियों का एक नया और बड़ा दल भी आया। अब परमेश्वर इस विपत्ति की उपमा देता है, योएल अध्याय 1:6-7। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वो सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। परमेश्वर पुकारता है, उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया। परमेश्वर ने कई बार इसराइल को अंगूर की लता की उपमा दी है। यशया के 6 अध्याय में परमेश्वर के अंगूर के खेत का उल्लेख है। वे अंगूर लगाते हैं, बाड़ा लगाते हैं, रस निकालने के कुंड बनाते हैं, पर फल लाने में हार जाते हैं। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम शाखाएं हो। हर शाखा जो मुझ में है वो फल लाती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों की उपमा दाखलता से की गई है। लेकिन इसराइल की एक और भी उपमा अंजीर के पेड़ से है। होशे की भविष्यवाणी में उसने उन्हें पहली बार 9 अध्याय के 10वें पद में पूर्ण विकसित अंजीर के पेड़ की उपमा दी है। यरमिया की पुस्तक में परमेश्वर ने इसराइल की उपमा निकम्मी अंजीर की टोकरी से की है, जो बेकार है, जिनको फेंका जाना है। यहां से परमेश्वर पुकार रहा है, योएल अध्याय 1:7। मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। जब यीशु अपने चेलों से अंत समय और अपने पुनः आने के चिन्ह बता रहा था, तब उसने कहा, अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत से सीखो। वो इसराइल राष्ट्र के बारे में जिक्र कर रहा है, जिसकी परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ से तुलना की है, और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि वो दृष्टांत तो यीशु ने अंजीर के पेड़ का बनाया था, वो आज के दिन जिसमें हम रहते हैं एक जबरदस्त अर्थ रखता है। जैसे उसने कहा था कि अंजीर के पेड़ में कली का चिन्ह उसके वापस आने के दिन के निकटता का अंतिम चिन्ह होगा, ये पीढ़ी कली को देखेगी। इसलिए इसराइल राष्ट्र का जन्म सच में परमेश्वर के वापस आने के दिन की निकटता का एक विशेष चिन्ह है, जिसको देखते रहने की हमें जरूरत है। मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला, वो उसकी छाल को खा गए, योएल अध्याय 1:7 में आगे लिखा है। उसने उसकी सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है। सारी छाल चबा ली गई और डालियों के अंदर का सफेद हिस्सा दिखने लगा, योएल अध्याय 1:8। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। ये एक बूढ़ी नौकरानी है जिसकी कभी शादी नहीं हो पाई, वो अपनी दुर्दशा पर विलाप करती है, योएल अध्याय 1:9। यहोवा के भवन में ना तो अनबलि और ना अर्ध आता है। उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। अनबलि जो वे लाते थे वो गेहूं का अच्छा आटा था, लेकिन टिड्डियों ने गेहूं के खेत को नष्ट कर दिया है। इसलिए अब वहां परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आटा नहीं था और दाखरस भी नहीं था, इसलिए याजक को तो विलाप करना ही था, योएल अध्याय 1:10-17। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नाश हो गया, नया दाखमधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारीक के मालिकों, गेहूं और जव के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है, दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष को मिला गया है। अनार, ताड़, सेब वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्ध अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दुहाई दो। इसलिए वे लोगों को उपवास के लिए बुला रहे थे, परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे कि इस बड़ी विपत्ति से जो उन पर आ पड़ी है वो उन्हें बचाए। योएल अध्याय 1:15। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यनाश का दिन होकर आएगा। इसलिए उसने इस विपत्ति को स्वीकार लिया और भविष्यत वक्ता के अनुसार दूसरे दिन की तरफ बढ़ गया, जिसमें परमेश्वर के न्याय के द्वारा भूमि बर्बाद की जाएगी। परमेश्वर का महान और न्याय का दिन। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यनाश का दिन होकर आएगा। बाइबल में बताया है कि परमेश्वर के न्याय का दिन आ रहा है, जो परमेश्वर के क्रोध का समय है, जिसे पुराने नियम और नए नियम में महाक्लेश का समय कहा गया है, जब परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करने और इस धरती पर महामारी भेजेगा। उस समय भी परमेश्वर फसलों को नाश करेगा, खाने की कमी और अकाल सारी पृथ्वी पर होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अकाल के काले घोड़े के बारे में बताती है कि उस समय गेहूं की एक माप एक दिन की मजदूरी में मिलेगा। एक आदमी सारे दिन काम करेगा और उसकी मजदूरी या तनख्वाह 250 ग्राम आटा होगी। इसलिए एक बहुत भयंकर बर्बादी जो परमेश्वर की तरफ से आ रही है। अब यहां एक ध्यान देने योग्य बात है जो आपको नोट करना चाहिए। ये बड़ी विपत्ति सर्वशक्तिमान की तरफ से होगी। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने भविष्यवाणियों को विकृत कर दिया है, जब उन्होंने इसराइल को कलीसिया बना दिया और इसलिए घोर विपत्ति के बीच उन्होंने पृथ्वी पर कलीसिया को रख दिया। और वे इस वचन का प्रयोग करते हैं जब यीशु अपने चेलों को चेतावनी दे रहा था कि उन पर विपत्ति आएगी। लेकिन इस विपत्ति में जो हम परमेश्वर के लोगों की तरह अनुभव करते हैं, उस महाक्लेश में जो पृथ्वी पर आने वाला है, एक बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर की संतान की तरह जो विपत्ति आप अनुभव करते हैं, उसका मूल आपके दुश्मन शैतान में है। जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, तब वही है जो आप पर विपत्ति लाता है। महाक्लेश जो आने वाला है वो सीधे परमेश्वर से आएगा। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि दुश्मन के द्वारा मुझ पर हमला किया गया, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि दुश्मन के उन हमलों में भी मेरे पास पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ है। इसलिए पवित्र आत्मा की उस शक्ति के द्वारा जो मेरे अंदर है, मैं जीत सकता हूं। कुछ भी हो, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि परमेश्वर मुझ पर हमला करेगा, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मुझे प्यार करता है, मैं उसको प्यार करता हूं। और रोमियो अध्याय 8:1, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसलिए सच ये है कि महाक्लेश परमेश्वर की तरफ से आएगा और कलीसिया इस महाक्लेश के समय का हिस्सा बनने से अलग रहेगी। ये सर्वशक्तिमान की तरफ से विनाश या बर्बादी की तरह आएगा। योएल अध्याय 1 पद 16 से लेकर 20 तक। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, खते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराते हैं? झुंड के झुंड गाय बैल विकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूं, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हांफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयां आग का कौर हो गई। इसलिए हम भूमि को बहुत सुनसान, वीरान, निर्जन स्थिति में पाते हैं। पशुओं के लिए चराई नहीं थी, फसल नहीं थी, वे सब नष्ट हो चुके थे।